हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारी आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, पिछले रविवार हमने इस प्रसंग से जो भगवान ने 8 शिक्षाएं दी, उन 8 शिक्षाओं में से हम चौथी शिक्षा पर चर्चा प्रारंभ किए थे कि ग्वाल सखाओं को भगवान ने भिक्षा मांगने के लिए जब भेजा तो ब्राह्मणों ने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। और इसकी शिक्षा हमने यह सीखी कि जब भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं उनकी ओर से प्रचार करने के लिए, तो अधिकांश समय होता है कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं और हम ये जो प्रचार कार्य है, विशेष रूप से कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें उत्तरदायित्व दिया है और श्रील प्रभुपाद के हम जो अनुयायी हैं इस्कॉन में, कि प्रचार का महत्व क्या है और यदि द्वापर युग में भगवान के निजी पार्षद रिजेक्ट हो गए तो कलयुग में फिर हम कितनी आशा रख सकते हैं कि कितने जीव इसे स्वीकारेंगे और इसका स्वागत करेंगे जैसे कि हम अपेक्षा रखते हैं। वी कैनॉट एक्सपेक्ट इन कलयुग दैट पीपल विल वेलकम एंड एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस द वे वी एक्सपेक्ट। तो इसे एक और बात समझ में आती है कि हम कुछ अपेक्षा रखते हैं जब हम प्रचार करते हैं। और कई बार ये देखा जाता है कि जो परिणाम होते हैं हमारे प्रचार के, वो हमारे अपेक्षा के कई बार ठीक विपरीत होते हैं या अलग होते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि फिर प्रचार कौन कर रहा है। यदि हमने किसी अपेक्षा से प्रचार किया है और हमने किसी तरीके से प्रचार किया है और उसके परिणाम अलग आ रहे हैं, तो ये समझ में आना चाहिए कि हम केवल माध्यम हैं, प्रचार तो स्वयं भगवान ही करते हैं। इसलिए हमने ये महत्वपूर्ण मुद्दा लिया था पिछली बार, रोल वर्सेस गोल। रोल का अर्थ है अभिनय। इसका अगर लिटरल ट्रांसलेशन हम करें, प्लेइंग रोल, इसका अर्थ होता है अभिनय करना। जैसे किसी नाटक में कोई पात्र अभिनय करता है और फिर उस नाटक का एक उद्देश्य होता है जिसको गोल बोल सकते। तो जितने पात्र होते हैं वो अपना अपना अभिनय करते हैं और सारे जो अभिनेता या अभिनेत्रियां होती हैं उस नाटक के, उनका उद्देश्य क्या है कि जो दर्शक आए हैं उनका मनोरंजन हो, तो वो गोल है। और उस गोल को सिद्ध करने के लिए जितने अभिनेता अभिनेत्री हैं वो जुट जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम जितने प्रचारक हैं इस्कॉन में, विशेष रूप से यदि हम अपना अभिनय देखें तो हम सबको अपना उद्देश्य पहले सामने रखना है और फिर जो हमें रोल दिया गया है हमारे गुरुजनों द्वारा उस रोल को पूरा करना है। और जब हम इसका उल्टा करते हैं कि रोल को सामने रख देते हैं तो फिर गोल दिखाई नहीं देता, तब फिर हम केवल मेरा अभिनय, मेरा रोल, मेरी पात्रता इत्यादि इत्यादि। और हमने कुछ उदाहरण लिए थे, तो आज हम प्रारंभ करेंगे हमारे प्रवचन को शास्त्रों में दिए गए दो उदाहरण से। श्री संप्रदाय में उदाहरण दिया गया है नमक का, कि नमक अपना अभिनय निभाता है किसी भी व्यंजन में किस तरीके से, कि उसका अभिनय ये है, उसका रोल क्या है। यदि हम कुछ या दाल बना रहे हैं या खिचड़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर नमक डालते हैं, तो जब नमक डालते हैं तो नमक अपना रोल कैसे अदा करता है, अपने आप का अस्तित्व खत्म करता है वो। जब तक वो नमक अपने आप का अस्तित्व खत्म न करे तब तक वो जो व्यंजन है उसका जो गोल है वो सिद्ध नहीं हो सकता। तो श्री संप्रदाय में काफी स्ट्रांग ये एग्जाम्पल दिया गया है नमक का। सॉल्ट हैज टू लूज इट्स आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू फुलफिल द गोल ऑफ दैट फूड प्रिपरेशन। तो उसी प्रकार से यदि हम चीनी या शक्कर का उदाहरण लें, तो खीर में जब शक्कर डालते हैं तो हम देखते हैं शक्कर ग्रैन्यूल्स या क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है। तो शुगर के विषय में भी यही हम कह सकते हैं, शुगर हैज टू लूज इट्स क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू स्वीटन द स्वीट राइस। वो जो रूप है शक्कर का रूप दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, एकदम चमकदार क्रिस्टल्स। उस शक्कर को उसका परित्याग करना पड़ता है यदि वो खीर में मिठास लानी है। तो उद्देश्य क्या है शक्कर का, मिठास लाना। यदि दूध में डाल रहे हो, खीर में डाल रहे हो, किसी मिठाई में डाल रहे हो, तो आप देखिए कि मिठास का अनुभव हम करते हैं परंतु शक्कर कहीं दिखती नहीं। तो ये उदाहरण दिया गया है एक प्रचारक का। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था, हु आर वी इन द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वी आर अ नॉन एंटिटी। जैसे कि नमक और शक्कर है, बिकम्स अ नॉन एंटिटी बट डजंट गिव अप द गोल विच इज टू बी फुलफिल्ड। तो इसके संदर्भ में एक बहुत ही स्वयं मेरे लिए जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है ये श्लोक, ये मुझे इतना प्रेरणा दिया है श्लोक कि व्यक्तिगत रूप से यदि मैं कहूं तो भगवान की सेवा या भगवान के जो सेवक हैं उसकी पराकाष्ठा इस श्लोक में बताई गई। द पिनेकल ऑफ सर्विटरशिप अनटू कृष्ण। और कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के संदर्भ में श्लोक है, रूप गोस्वामी द्वारा कहा गया, और मानो रूप गोस्वामी ये श्लोक रिपीट कर रहे हैं, राधा रानी द्वारा कहा गया श्लोक। तो इसमें हमें सबसे पहले श्लोक बोलने से पहले और उसकी व्याख्या करने से पहले मैं समझाना चाहूंगा कि हमें ये जो श्लोक का जो मर्म है वो समझना है, इसके पीछे राधा रानी का जो भाव है वो समझना है। क्योंकि राधा रानी नम्रता से अपने आप को एक पार्थिव शरीर वाली जीव मान रही हैं, जो कि वो है नहीं। वो तो सच्चिदानंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण की विस्तारित स्वरूप है। बट शी इज कंसिडरिंग हर सेल्फ एज समवन हु इज हैविंग दिस अर्थली बॉडी। तो ये उनका भाव है, हमें नहीं समझना है, लेकिन ये उनका भाव है। तो इस भाव में श्रीमती राधा रानी ये श्लोक कही हैं। पंचत्वं तनु एति भूत निवह स्वाम शेर मिलन्तु ध्रुवं धातारं प्रणिपत्य हंत शिरसं तत्ताल वृन्ते निलम। तो यहां पर श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि मेरे जीते जी मेरे जो पांच तत्व हैं शरीर के, वो तो कृष्ण आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कि हम हमारे पांच तत्वों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि जीते जी तो मेरे शरीर के पांच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये पांच तत्व जीते जी तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, परंतु मेरी एक ही प्रार्थना है। किन से वो प्रार्थना कर रही हैं? धातारम प्रणिपत्य हंत शिरसम। मैं अपने शीश को विधाता ब्रह्मा जी, जिन्होंने ये पांच तत्वों का शरीर दिया है सब जीवों को, तो मैं उनके समक्ष प्रणिपत्य ये प्रार्थना करती हूं कि जब मेरा शरीर न रहे तो मेरे शरीर के ये पांच तत्व मेरे शरीर नहीं रहने के पश्चात भी मेरे कृष्ण की सेवा में लगे रहे। अब देखिए, हमने कभी कोई ऐसे सेवक के विषय में सुना है? हम ये सुनते हैं कि ठीक है, ये शरीर खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा शरीर मिलेगा तो दूसरे शरीर में सेवा करेंगे। परंतु राधा रानी कह रहे हैं कि नहीं, ये शरीर खत्म होने के बाद भी जो तत्व हैं वो आपकी सेवा से जुड़े रहें। अगला शरीर तो कह, वो तो बिना कहे सेवा में लगना ही है, परंतु ये शरीर, जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, परंतु ये शरीर भी और ये शरीर के पांच तत्व भी शरीर अंत होने के पश्चात आपकी सेवा में लगे रहे। और फिर इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी इसकी व्याख्या करती है कि मेरे शरीर का जो पार्थिव अंश है, पार्थिव अंश का अर्थ है अर्थ एलिमेंट, तो वो मेरे शरीर के अंत होने के पश्चात उस धरती में विलीन हो जाए जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण अपने चरण रखते हैं, ताकि मेरे शरीर का पार्थिव अंश भगवान की इस प्रकार से सेवा में लगा रहे। फिर वो कहती हैं कि मेरे शरीर का जो जल अंश है वो उस सरोवर में विलीन हो जाए जिस सरोवर में भगवान श्री कृष्ण अपनी जल क्रीड़ा करते हैं। फिर मेरे शरीर का जो अग्नि अंश है वो उस ज्योति में विलीन हो जाए जिस ज्योति में भगवान अपने चेहरे को देखते हैं आईने में। किसी व्यक्ति को यदि अपना चेहरा देखना है आईने में तो उसको रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मेरे शरीर के का जो अग्नि अंश है वो उस ज्योति में विलीन हो जाए जिस ज्योति में भगवान आईने में अपना मुखमंडल देखते हैं, और मेरे शरीर का जो वायु अंश है वो उस वायु में विलीन हो जाए, जब भगवान श्री कृष्ण की आरती होती है तो पुजारी जब पंखा ढुलाता है, तो जब पुजारी पंखा ढुलाता है तो उसमें से जो वायु भगवान को लगती है, तो मेरा जो वायु अंश है उसमें विलीन होकर भगवान को, भगवान की सेवा करे, और मेरे शरीर का जो आकाश अंश है वो उस आकाश में विलीन हो जाए जिस आकाश के नीचे भगवान अपनी लीला करते हैं। इस प्रकार से धातारम प्रणिपत्य हंत शिरसम तत्ताल वृंते नीलम पंचत्वम तनु एति भूत निवह। इस प्रकार से मेरे पांचों तत्व भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहे। आज के श्लोक में ये नित्यम शब्द सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये ब्राह्मण पत्नियां ये भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किए थे केवल, उन्होंने अब तक भगवान को देखा नहीं। जैसे पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक प्रचारक को यदि प्रामाणिक प्रचारक बनना है, एम्पावर्ड प्रीचर बनना है, तो उसकी श्रृंखला क्या होनी चाहिए। फर्स्ट इज हियरिंग, देन सीइंग, देन एप्लीकेशन एंड देन प्रीचिंग। तो यहां पर ब्राह्मण पत्नियां क्या कर रही हैं? श्रुत्वा, श्रुत्वा अच्युतम और नित्यम। उनका जो श्रवण था वो नित्य था, तो नित्य रूप से नित्यम भागवत सेवया जैसे कहा गया, तो नित्य रूप से वो भागवत, श्रीमद् भागवत या भगवान जो कि स्वयं साक्षात भागवत हैं, उनका श्रवण किया करती थी। और उसके वजह से हुआ क्या, जब नित्य भगवान श्री कृष्ण का श्रवण किया तो दर्शन उत्सुका, उनके अंदर उत्सुकता भगवान के दर्शन की पैदा हुई। तो भगवान के दर्शन की उत्सुकता पैदा हुई और उसके पश्चात उन्होंने एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन किया कि जब भगवान ने उनसे कुछ मांगा तो वो सब कुछ लेकर भगवान को अर्पित करने के लिए दौड़ी। तो ये है सीक्वेंस कि श्रवण जब हम करते हैं तो श्रवण के पश्चात हमारे अंदर भगवान के प्रति उत्सुकता पैदा होनी चाहिए। यदि उत्सुकता पैदा नहीं हो रही तो या तो नित्यम श्रवण नहीं हो रहा, या यदि नित्यम श्रवण हो रहा है तो कहीं पर कुछ कमी हो रही है। और यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति उत्सुकता जागृत हो चुकी है श्रवण करने के पश्चात, तो उसका परिणाम क्या है कि क्या हम अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने किया। तो ये गोपियों का जो भाव, ये ब्राह्मण पत्नियों का जो भाव और श्रीमती राधा रानी का भाव जो अभी हमने सुना, ये होना चाहिए एक प्रचारक का भाव कि उद्देश्य क्या है। जो कुछ हम करते हैं, हमारा उद्देश्य है श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की मुस्कान, उनकी प्रसन्नता, और उसके लिए हमें चाहे कैसा भी अभिनय करना पड़े, इसे कहते हैं प्रचारक। जैसे चैतन्य लीला में दुखी इनकी कथा है, महाप्रकाश लीला, महाप्रकाश लीला जब भगवान का अभिषेक हो रहा था, तो भगवान का अभिषेक, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है और बड़े बड़े भगवान के पार्षद लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, और ये साधारण सी स्त्री जिसको नाम दिया गया था दुखी, क्योंकि सभी मानते थे कि इसके जीवन में कुछ भी सुख नहीं है, इसलिए उसे नाम ही दुखी दे दिया। तो पूरी चैतन्य लीला में भगवान के इतने सारे पार्षद और उनकी ऐसी ऐसी लीलाएं बताई गई हैं, और इन लीलाओं में से ये एक दुखी केवल कुछ चंद श्लोक जिसके अंदर इनका वर्णन है और इनको दुखी से सुखी चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से बना दिया। क्यों? क्योंकि ये दुखी चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं उनका उद्देश्य सिद्ध कर रही थी अपने अभिनय के द्वारा। उनका फोकस क्या था? चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक चल रहा है, ये उद्देश्य है कि उनका अभिषेक निरंतर चलता रहे। तो उनका अभिषेक निरंतर चलते रहने के लिए निरंतर गंगा जल का सप्लाई चाहिए, जो कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था उस समय। तो ये ला ला कर जिस कमरे में चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक चल रहा था वो अंदर भी प्रवेश नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं योग्य नहीं हूं अंदर जाने के। तो केवल गंगा जल मटके भर भर कर गंगा जल बाहर कमरे के उनके लिए अरेंज कर रख रही थी, और किसी का ध्यान नहीं गया उनके ऊपर। ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? अभिनय कि उन्होंने ये जो रोल प्ले किया, किसी का ध्यान नहीं गया चैतन्य महाप्रभु के अलावा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मेरी प्रसन्नता का जो उद्देश्य है वो सिद्ध करने का रोल कौन अदा कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इंपॉर्टेंस किसको दिया? वो उद्देश्य जो सिद्ध हो रहा था। तो जब उद्देश्य सिद्ध हुआ प्रामाणिक तरीके से, तो जो अभिनय कर रहा था उस उद्देश्य को सिद्ध करने का उसको कृपा मिली। जैसे मायापुर यात्रा में बहुत से भक्त गए, तो हम लोगों ने मायापुर में पंचतत्व का दर्शन किया है। कितने विशाल ये पंचतत्व हैं वहां के, और इनके विषय में स्वयं श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मायापुर में इतने विशाल पंचतत्व होने चाहिए। तो बहुत प्रभुपाद के जाने के पश्चात बहुत वर्ष बीते, तो जनानिवास प्रभु उनके मन में तब से था कि प्रभुपाद का ये जो आदेश है इसको पूरा करना है। और जनानिवास प्रभु ने सबसे पहले जो डीटी डिपार्टमेंट में उन्होंने कुछ कलेक्ट किए थे डोनेशंस, वो सबसे पहले निकाले कुछ 6 लाख रुपए, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और जहां पर इतने बड़े बड़े साइज के अष्ट धातु में मूर्तियां बन सके, साउथ में कुंभकोणम जगह है, तो वहां जाकर सब कुछ अरेंजमेंट किया, उनको सब डिस्क्रिप्शन दिया, जो कुछ उनके इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक चीजें वो जनानिवास प्रभु स्वयं किए। और फाइनली जब पंचतत्व बन गए, एक एक मूर्तियों के साइज 13-13 फुट, कितनों ने दर्शन किए पंचतत्व मायापुर के। तो जब पहली दफा वो डिवोटीज ने वो दर्शन जब खुला, तो वो चकाचौंध रह गए। उनको कोई अंदाजा नहीं था कि पंचतत्व इतने विशाल काय कृपा बांटने के लिए प्रस्तुत हुए अपने आप को। तो जनानिवास प्रभु उनका ट्रांसपोर्टेशन, सोचिए इतने बड़े साइज की मूर्तियां और उनका ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां कराना है, साउथ से नवद्वीप मायापुर, तो सब कुछ उन्होंने करवाया। और फिर जब ये दिन आया इंस्टॉलेशन का, तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था इंस्टॉलेशन के पहले कि जो फर्स्ट अभिषेक है वो कौन करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, दो व्यक्ति भी नहीं कर सकते इतने, ये केवल कृष्ण बलराम या गौर निताय या राधा कृष्ण डीटीज नहीं है, पांच हैं, केवल दो डीटीज नहीं है, पांच डीटीज हैं, और इतने बड़े बड़े साइज के हैं कि स्कैफोल्डिंग लगाकर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़कर अभिषेक करना होगा। और वो भी कोई छोटे छोटे पात्रों में नहीं, बड़े बड़े लीटर के पिंप जिसको बोलते हैं वो सब से अभिषेक। तो जीबीसी में बहुत बड़ा ये विवाद हुआ कि कौन करेगा अभिषेक, कि हमारे सीनियर जीबीसी करेंगे या अलग अलग सेंटर्स के टेंपल प्रेसिडेंट्स करेंगे, ये बहुत विवाद चल रहा था। और इतना विवाद चल रहा था कि लड़ाई झगड़े होने लगे अभिषेक को लेकर। और जिन्होंने जो सूत्रधार बने ये सब पूरे पंचतत्व के इंस्टॉलेशन में, जिस दिन अभिषेक फर्स्ट इंस्टॉलेशन हो रहा था, जनानिवास प्रभु एक कोने में खड़े केवल रो रहे थे। वो ऑल्टर के अंदर भी नहीं गए, अभिषेक तो छोड़ दीजिए, वो न तो इस वाद विवाद में थे न वो अपने आप को आगे कर रहे थे, वो कहीं कोने में खड़े केवल रो रहे थे। और हिज होलीनेस राधानाथ महाराज ने कहा, पंचतत्व हैज बीन इंस्टॉल्ड नॉट बाय द पंचामृत ऑफ दीज अभिषेक्स बट बाय द टीयर्स ऑफ जनानिवास प्रभु। और उस दिन राधानाथ महाराज भी फास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जनानिवास प्रभु पूरे दिन फास्टिंग के पश्चात वो कहीं कोने में जाके थोड़ा सा महाप्रसाद का राइस, ऐसे ही उबला हुआ चावल वो ले रहे थे। तो राधानाथ महाराज, हम लोग सब सोच रहे थे कि राधानाथ महाराज अचानक गायब कहाँ हो गए, तो वो जनानिवास प्रभु के साथ बैठकर वो दोनों पंचतत्व का वो थोड़ा सा उबला हुआ चावल खा रहे थे फास्ट ब्रेक करने के लिए। तो ये जो अद्भुत मंदिर मायापुर में बन रहा है, इसके विषय में भी पूछा गया था कि अद्भुत मंदिर कौन बना रहा है, जो डोनेशंस दे रहे हैं, हाँ वो सब बहुत अच्छी बात है और जो वहां पर कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहा गया है कि जनानिवास प्रभु जो वहां पर इतने सालों से इंस्टॉल्ड है, इट इज बिकॉज ऑफ जनानिवास प्रभु दैट द अद्भुत मंदिर ऑल्सो इज कमिंग अप। क्योंकि अद्भुत मंदिर का अर्थ क्या है, पंच तत्व जो कि अद्भुत हैं, वो केवल स्ट्रक्चर नहीं मंदिर का, मंदिर के प्राण कौन होते हैं, आराध्य देव अर्च विग्रह। एक भक्त वो बता रहे थे कि जब भी उनके जीवन में कोई समस्या होती है तो वो केवल जनानिवास प्रभु के पास जाते हैं और वो एक घंटे तक बस केवल अपनी समस्या सुनाते हैं उनको, और जनानिवास प्रभु ऐसे हैं कि वो बैठकर सुनते हैं। और ये भक्त बता रहे थे कि मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मुझे कुछ सोल्यूशन दें, वो केवल जब मेरी समस्या सुन लेते हैं उसमें मेरी मेरा सब कुछ समाधान मुझे मिल जाता है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु की ओरिजिनल महाप्रकाश लीला में उनके अभिषेक के लिए जो दुखी मटके ला ला कर रख रही थी, मुझे लगा उसी प्रकार से जनानिवास प्रभु ने पंच तत्व के अभिषेक के लिए कौन सा जल लाया, अपने आंसुओं का। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ऐतिहासिक उदाहरण है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दुखी को अपने स्वयं की साक्षात कृपा दी, वैसे ही जनानिवास प्रभु जैसे प्रचारक जिन्होंने पंचतत्व को अपने आंसुओं से इंस्टॉल किया, उनको डेफिनेटली चैतन्य महाप्रभु ने अपनी व्यक्तिगत कृपा दी है। तो हम कौन से मुद्दे पर हैं, रोल वर्सेस गोल, कि जनानिवास प्रभु, दुखी इत्यादि, श्रीमती राधा रानी, ये सारे उदाहरण जो हैं, ये उदाहरण क्या सिद्ध कर रहे हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, श्रील प्रभुपाद, इनके उद्देश्य पर फोकस करना चाहिए। और जितने भी प्रॉब्लम्स इस्कॉन में होते हैं वो इस पर ही होते हैं कि मेरा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है। जब हम रोल पर फोकस करते हैं तब प्रॉब्लम्स होते हैं। एक और उदाहरण मैं सोच रहा था, श्री संप्रदाय के एक रामानुजाचार्य के बहुत ही प्रगत शिष्य कुरेश, इनका कुरेश, इनको ये जो नाम मिला, ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, जमींदार कुर प्रांत के, कांचीपुरम के पास है ये, तो कुरुक्षेत्र के ये बहुत बड़े जमींदार, इसलिए इनको ये नाम मिला था कुर के ईश, कुरेश। और इनकी दिनचर्या क्या होती थी कि इतने बड़े जमींदार और इतने दानशूर कुरेश, इनकी पत्नी का नाम था अंडाल, तो रोज सुबह इनका बड़ा बंगला हवेली थी तो उसके द्वार खुलते और जितने दिन दुखियारे भिखारी जो भी कुछ लेना चाहते वो आते और दिन भर कुरेश उनको दान देते रहते और शाम के समय जब सारे दिन दुखियारे अपना सब दान लेकर चले जाते तो उनके हवेली का द्वार बंद होता। ये वो हर दिन करते, खाली जन्माष्टमी के टाइम नहीं। तो कांचीपुरम जो कि पासी में था, जहां पर वरदराज, भगवान वरदराज हैं, तो लक्ष्मी की जो डीटी हैं, तो लक्ष्मी देवी एक बार वरदराज जी से पूछती हैं कि ये रोज शाम को जोर से आवाज क्या आती है सूर्यास्त के समय। तो वरदराज कहते हैं कि ये सब बताते हैं कि कुरेश है और कुरेश सुबह से शाम तक केवल दान दक्षिणा में लगे रहते हैं, तो सूर्यास्त के समय उनके हवेली का जो द्वार बंद होता है इसकी आवाज है ये। तो लक्ष्मी, इनको जब ये समझ में आता है कि इतना बड़ा दानशूर भी कोई हो सकता है, तो वो कहती हैं पुजारी से, वरदराज के पुजारी से कहती हैं कि मुझे मिलना है। अब देखिए ये डीटी जैसे पुजारी से बात करते थे, ये सबसे पहले ये समझना होगा कि ये क्या स्टैंडर्ड था पुजारी का भी। जैसे मान लो अगर राधा मदन गोपाल जी बोलें गोविंदानंद प्रभु से, मुझे गोपालानंद प्रभु को बुला कर लाओ। तो पता नहीं बोलते भी होंगे। क्योंकि दोनों का सरनेम आनंद है। तो लक्ष्मी देवी उन्होंने पुजारी से कहा कि मुझे इस कुरेश से मिलना है। तो जब पुजारी, अब पुजारी इतना वो उतावले, उनको लगा कि ये कुरेश, देखिए क्या कृपा इनको मिलने वाली है कि डायरेक्टली लक्ष्मी देवी वरदराज दर्शन लेना चाहते हैं। भक्त आते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए, यहां पर डीटीज कुरेश का दर्शन लेना चाहते हैं। अब देखिए कि यदि हम कुरेश के जगह होते और यदि हमको गोविंदानंद प्रभु आकर बोलते कि मदन गोपाल जी बुला रहे हैं, दर्शन आपका चाहते हैं, वो तो हम जैसी भी अवस्था में होते भाग कर जाते कि नहीं, ना धोकर। तो कुरेश को जब पता लगा कि लक्ष्मी देवी मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन क्यों, कारण भी पता लगा उनको, क्योंकि मैं इतना दान देता हूं इसलिए वो मुझसे मिलना चाहती हैं, तो कुरेश वो कहने लगे कि लानत है ऐसे दान पर मेरे। कि मैं दानवीर के रूप में प्रख्यात हो रहा हूं, टू हेल विथ माय चैरिटेबल डिस्पोजिशन, टू हेल विथ दिस कुरेश हु इज फेमस फॉर बीइंग चैरिटेबल, ऐसे अपने आप को कोसने लगे। और वो गए नहीं, अपनी पत्नी अंडाल को कहा कल सुबह निकलना है हमको यहां से, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जो शरीर पर कपड़े हैं बस वही, और कुछ साथ में नहीं लेना है, सब निकल छोड़कर जाना है यहां, इसका वैराग्य लेकर यहां से। अब देखिए उनकी पत्नी भी इतनी कोऑपरेटिव कि तुरंत वो रेडी हो गए। तो दूसरे दिन सुबह निकले, बहुत मुश्किल है ये। बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो जाते जाते एक सोने की कटोरी ले लिया। किसने? अंडाल ने एक सोने की कटोरी ली, लेकिन वो कटोरी किस लिए ली? अपने पति को उसमें कुछ भिक्षा मिलेगी तो कुछ खिलाने के लिए। जाते जाते, क्योंकि अब इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े लैंडलॉर्ड, सारा ऐश्वर्य, पूरी हवेली, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, तो खाने के लिए कुछ भिक्षा तो मांगनी होगी, तो कम से कम कुछ तो चाहिए। तो जाते जाते उन्होंने एक सोने की कटोरी, मतलब ये समझना है कि उनके घर के बर्तन सब सोने के थे। तो क्या स्टैंडर्ड था उनका, ये समझिए यार। और रास्ते में कुरेश इनको आशंका हुई कि अंडाल कुछ तो साथ में लाई है, पूछ लिया तुम घर से कुछ उठा कर लाई हो? तो उन्होंने दिखा दिया कि, तो उन्होंने हाथ में वो सोने की कटोरी और फेंक दिया उसको कि जब मैंने कहा था कि साथ में कुछ नहीं लाना है, उसको भी फेंक दिया। और चलते 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 कांचीपुरम से श्रीरंगम पहुंचे। रामानुजाचार्य जब उनको पता लगा, तो रामानुजाचार्य उन्होंने कहा कि कम से कम इनके लिए एक कुटिया तो होनी चाहिए रहने के लिए, ये कोई सन्यासी थोड़ी है, गृहस्थ हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी कुटिया तुरंत रामानुजाचार्य इन्होंने अरेंज करवाई। अब कुरेश रोज अपनी पत्नी के साथ भिक्षा के लिए जाते, बाकी पूरे दिन भजन करते, रंगनाथ जी की सेवा करते, और स्वयं के खाने के लिए थोड़ी भिक्षा मांगने के लिए जाते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी बरसात हो रही थी कि बाहर जाने का कोई मौका नहीं लगा इन दोनों को, निकल नहीं पाए, इतनी बरसात हो रही थी। और पूरे सुबह से लेके भूखे, कुछ खाया नहीं, कुछ भिक्षा नहीं मिली, और राजभोग का समय था, रंगनाथ जी के राजभोग का समय आया। तो राजभोग की जो आरती की आवाज, घंटियों की आवाज अंडाल उनकी जो पत्नी है उनको सुनाई दे रही थी। जैसे कि अपने यहां पर घंटियों की आवाज से समझ में आ जाता है कि ऑफरिंग शुरू हुई है, अब ऑफरिंग खत्म हुई, अभी आरती शुरू हुई, घंटियों की आवाज से टाइमिंग के अनुसार समझ में आ जाता है। तो वैसे अंडाल को समझ में आ गया कि अभी राजभोग ऑफरिंग हो चुका है रंगनाथ जी का। तो उन्होंने केवल मन में सोचा कि यदि रंगनाथ जी के राजभोग से कुछ मेरे पति को मिल जाए आज। वो अपने विषय में नहीं सोच रही थी, अपने पति के विषय में सोच रही थी, केवल उन्होंने मन में सोचा। और रंगनाथ जी ने तुरंत पुजारी को कहा कि कोई भी ये राजभोग को टच नहीं करेगा। क्योंकि उस टाइम से शायद ये प्रथा है कि ऑफरिंग के कुछ सेकंड बाद कहां गायब हो जाता है, सब कुछ समझ में नहीं आता होगा। तो इसलिए रंगनाथ जी ने पुजारी को कहा कि ये प्रोसेशन में, पालकी में मेरा पूरा भोग वो कुटिया में कुरेश और उसकी पत्नी है उसके लिए लेकर जाओ। तो पालकी में रंगनाथ जी का राजभोग और सभी देख रहे हैं कहां जा रहा है। अभी यहां पर भी जब राजभोग की घंटी बजती है तो बहुत लोग सोचते होंगे मन में, काश उसमें से एक कटोरी मुझे भी कुछ मिल जाए। पता नहीं मदन गोपाल जी प्रोसेशन में भेजते हैं कि नहीं, लेकिन रंगनाथ जी ने प्रोसेशन में भिजवाया अपना स्वयं का राजभोग। अब प्रसाद बन चुका था जो। तो जब कुरेश ने देखा कि पालकी में ये सब कुछ आ रहा है, अब देखिए कितना ये लोग सेंसिटिव कि तुरंत वो समझ गए कि न तो मैंने मांगा और न वहां से अपने आप से कोई भेजेगा। तो तुरंत अपनी पत्नी को पूछा, तुमने मन में सोचा था क्या? पत्नी ने कहा, हाँ मैंने एक मिनट के लिए सोचा था। तो डांटने लगे, अरे यहां पर हम रंगनाथ जी की सेवा करने के लिए आए, यहां पर ऐशो आराम करने के लिए नहीं आए। और फिर क्योंकि भगवान स्वयं भेजे हैं अपना महाप्रसाद तो उसका निरादर नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उसमें से लिया ऑनर करने के लिए और फिर अपना महाप्रसाद अंडाल को दिया, अपनी पत्नी को। तो हुआ क्या, वो महा महा हो गया। और जैसे ही अंडाल ने रंगनाथ जी का महा महा लिया तो अंडाल गर्भवती हो गई और उनके दो पुत्र पैदा हुए, व्यासाचार्य और पराशर भट्ट। और ये कहा जाता है कि ये दोनों डायरेक्टली रंगनाथ जी के ही पुत्र माने जाते हैं, क्योंकि अंडाल ने रंगनाथ जी का महा महा खाकर ये पुत्रों को जन्म दिया। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट सन्स ऑफ रंगनाथ। कौन? व्यासाचार्य और पराशर भट्ट। तो रामानुजाचार्य, अब कुरेश रामानुजाचार्य के डिसाइपल थे, गृहस्थ डिसाइपल। तो रामानुजाचार्य, इनको आदेश दिया था यमुनाचार्य ने, तीन आदेश दिए थे मरते समय। तो यमुनाचार्य ने तीन आदेश दिए थे। सबसे पहला आदेश था कि शुद्ध भक्ति का प्रचार करो। दूसरा आदेश था कि वेदांत सूत्र के ऊपर तुम टीका लिखो, जो कि रामानुजाचार्य ने आगे चलकर श्री भाष्य लिखा। और तीसरा आदेश यमुनाचार्य ने दिया था कि तुम्हारे वंश में, तुम्हारे शिष्य वंश में पराशर नाम का व्यक्ति होना चाहिए, जो कि व्यासदेव जी के पिता का भी नाम था पराशर। तो अब तीनों में से एक जो आदेश था वो पूरा नहीं हुआ था, और वो कौन सा था कि अब तक रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका नहीं लिखी थी, क्योंकि पराशर नाम के ये बेटे तो पैदा हो गए और शुद्ध भक्ति का प्रचार भी रामानुजाचार्य कर रहे थे, परंतु वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने स्वयं टीका नहीं लिखी थी। ये जो दूसरा आदेश था रामानुजाचार्य का उनको, तो अब उन्होंने सोचा कि समय आ गया है, मेरे जाने से पहले मुझे ये दूसरा आदेश जो है वेदांत सूत्र पर टीका लिखने का, ये मुझे पूरा करना है। तो उन्होंने कुरेश और कुछ उनके शिष्यों को लिया और वो निकल पड़े श्रीरंगम से कश्मीर की यात्रा। क्यों? क्योंकि उनको मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए था एक ग्रंथ का जिसका नाम था बोधायन वृत्ति। इसका मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए था, पांडुलिपि जिसको कहते हैं, तो वो उनको चाहिए था जिसके सहारे वो श्री भाष्य लिख सकें अपनी टीका। और वो एक मायावादी मठ में कश्मीर में अवेलेबल था खाली। तो ये लोग पैदल निकले, कौन? कुरेश, रामानुजाचार्य और बाकी उनके शिष्य, श्रीरंगम से कश्मीर। तो जब वहां पर वो पहुंचे तो ये मायावादी मठ था, और ये मायावादी जानते थे कि रामानुजाचार्य कितने शक्तिशाली प्रचारक हैं, और वो भी कौन से प्रचारक हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने वाले, और ये श्री भाष्य लिख देंगे तो इनका मायावाद खत्म हो जाएगा। तो ये मायावादी जो वहां पर थे वो नहीं चाहते थे कि ये बोधायन वृत्ति रामानुजाचार्य को मिले, तो वो मना कर दिए। वो कहे कि तुम्हारी प्रामाणिकता क्या है कि तुम्हें ये ग्रंथ हम दें, प्रूव करो। तो कुरेश, उन्होंने कहा इन मायावादियों को, क्योंकि ये सरस्वती के उपासक थे और सरस्वती जी का मंदिर था उस मठ में और सरस्वती जी की मूर्ति थी उस मठ में, तो कुरेश ने इन मायावादियों के सामने ये प्रस्ताव रखा, ठीक है, यदि तुम्हें शंका है हमारी प्रामाणिकता पर तो ये बोधायन वृत्ति को आज रात को आप आपके ऑल्टर में रखो, और कल सुबह यदि ये ग्रंथ सरस्वती जी के हाथ में दिखा, जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की, यदि ये ग्रंथ सरस्वती जी के मूर्ति उनके हाथ में दिखा, मतलब हम प्रामाणिक हैं, और मैं बोल रहा हूं कि कल सुबह ये ग्रंथ उनके हाथ में होगा, क्या कॉन्फिडेंस कुरेश का, दैट यू कीप दिस बोधायन वृत्ति इन द ऑल्टर एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सरस्वती विल बी होल्डिंग इट इन हर हैंड्स, दैट विल प्रूव दैट वी आर बोनाफाइड। तो अब ये मायावादी कुरेश का कॉन्फिडेंस देखकर वो लोग हिल गए। तब इन्होंने क्या किया कि पुजारी को घूस दी, पुजारी को कहा कि देखो हमको 100% पता है कि ये होने वाला है, तो सुबह ऑल्टर खुलने से पहले सरस्वती के हाथ में बोधायन वृत्ति तुम निकालकर नीचे रख देना। पुजारी को घूस देकर कहा कि उनको भी पूरा विश्वास था कुरेश ने जो कहा था, मायावादियों को भी, लेकिन फिर भी वो नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने पुजारी को घूस देकर बोल दिया कि सुबह तुम जब ऑल्टर में जाओगे तो ये ग्रंथ सरस्वती के हाथ में होगा। पुजारी ने कहा सही में? हाँ होगा, और ऑल्टर खोलने से पहले उनके हाथ से निकालकर वापस नीचे रख दे। तो पुजारी को कुछ ठीक नहीं लगा, उसने जाके देखा तो वही रात में बोधायन वृत्ति सरस्वती इनके हाथ में, और उसने कहा कि नहीं, ये लोग प्रामाणिक हैं, इनको बोधायन वृत्ति मिलनी चाहिए। तो जब मायावादियों को समझ में आया कि ये न किन प्रकार इनको ये ग्रंथ मिलने वाला है, तो उन्होंने बोधायन वृत्ति जला दिया। इन मायावादियों ने वो ग्रंथ को जला दिया। और फिर जब ऑल्टर खोला तो कुछ ग्रंथ ही नहीं। तब फिर रामानुजाचार्य इन्होंने कहा कि सरस्वती देवी के जो केश हैं, बोधायन वृत्ति की जो ओरिजिनल कॉपी है, उनके केश में छिपी हुई। और फिर जाकर जब सब लोग चेक किए तो सरस्वती के जो केश हैं उनमें से वो ग्रंथ उन्होंने बाहर निकाला। और फिर मायावादी कुछ कर नहीं सके। अब इस हद तक सिद्ध हो गया कि कितने प्रामाणिक हैं, तो उनको बोधायन वृत्ति देना ही पड़ा। तो कुरेश जानते थे कि ये फिर भी छोड़ेंगे नहीं हमको, ये रास्ते में गुंडे भेजेंगे, क्योंकि चलकर जाना है वापस श्रीरंगम उस ग्रंथ को लेकर। तो ये लोग निकल पड़े और रास्ते में गुंडे आए, ये मायावादियों ने भेजे थे, और वो बोधायन वृत्ति लेकर भाग गए। तो अब रामानुजाचार्य सोचने लगे कि इतनी मेहनत कर हम आए, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की, ग्रंथ हमको हमारे हाथ में भी आ गया, अब मैं कैसे यमुनाचार्य का वो आदेश पूरा कर पाऊंगा। तो अब देखिए कुरेश क्या कहते हैं। कुरेश कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, रात में जब हमको ग्रंथ मिला था, क्योंकि वो लोग सुबह निकले थे, तो रात भर रामानुजाचार्य और बाकी शिष्य सो रहे थे और कुरेश रात भर वो ग्रंथ पढ़ रहे थे। और कुरेश ने रामानुजाचार्य से कहा कि मैंने पूरा ग्रंथ रात में कंठस्थ कर लिया। अब ध्यान में रखिएगा कि ये रामानुजाचार्य के एक गृहस्थ डिसाइपल थे, ये कोई बहुत बड़े भक्ति शास्त्री सन्यासी नहीं थे। तो एक रात में इन्होंने बोधायन वृत्ति पढ़ी और फोटोग्राफिक मेमोरी, उन्होंने कहा कि एज इट इज मुझे फर्स्ट कवर टू कवर पूरा ग्रंथ पता है, तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट्री लिखो। तो मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं कि यहां पे देखिए कि अपने गुरु महाराज का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए रामानुजाचार्य अपने गृहस्थ डिसाइपल की ऐसी कला को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुरेश ने जो अपना अभिनय किया, अपना रोल अदा किया, और फिर उसकी वजह से श्री भाष्य रामानुजाचार्य लिख सके। अब इनका जो रोल है यहां तक खत्म नहीं होता, जो असली स्टोरी अब आ रही है कुरेश की। तो चोला डायनेस्टी साउथ में, एक उस समय की चोला डायनेस्टी, उनका राजा था कोलाटुंगा। तो ये जो राजा, ये शैवाइट था, भगवान शिवजी का उपासक था, और ये बहुत द्वेष करता था वैष्णवों से, विशेष रूप से रामानुजाचार्य से। तो इसका प्रोजेक्ट क्या था? इसका प्रोजेक्ट ये था कि जितने वैष्णव हैं उनको शैवाइट बनाना है, ये उसका प्रोजेक्ट था। और इसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था चातुग्राम, और ये चातुग्राम पहले कुरेश का शिष्य रह चुका था, लेकिन ये रामानुजाचार्य और कुरेश से बहुत द्वेष करता था। तो इसने कोलतुंग को कहा, ये मिनिस्टर ने, इस मंत्री ने अपने राजा को कहा कि यदि तुमको वैष्णव सबको बनाना है, शैवाइट सबको बनाना है इन वैष्णवों को, तो रामानुजाचार्य को शैवाइट बनाओ, और अगर वो शैवाइट नहीं बनता तो उसको मार डालो। तो कोलतुंग को जब समझ में आया कि रामानुजाचार्य में इतनी शक्ति है, तो तुरंत उसने अपने दूत भेजे कांचीपुरम, श्रीरंगम और कहा कि रामानुजाचार्य को कोलातुंग ने बुलाया है तुरंत, किसके लिए? वाद विवाद के लिए। तो जब कुरेश को यह समझ में आया तो कुरेश ने कहा कि देखिए, उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, वैष्णविज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, मेरा कुछ इतना महत्व नहीं है, तो मैं आप बनकर जाऊंगा। मतलब रामानुजाचार्य एक सन्यासी और कुरेश एक गृहस्थ, तो उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा कि आप मेरे कपड़े पहनिए और आपके कपड़े मुझे दीजिए। देखो, कोई गृहस्थ डिसाइपल अपने सन्यासी गुरु को ऐसे बोल सकता है कि आप वाइट पहनिए और आपका सैफ्रन मुझे दीजिए? तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या रोल अदा कर रहे हैं कुरेश, कि वो अपने गुरु को बचाने के लिए वो गुरु का ड्रेस भी पहनने के लिए रेडी हैं और अपना ड्रेस गुरु को दे रहे हैं कि ये पहनकर आप भाग जाओ यहां से, क्योंकि आप अगर देरी करोगे पहुंचने में तो वो सैनिक भेजकर पकड़ लेंगे आपको, और कोलातुंग ने आपको देखा नहीं है, मुझे भी नहीं देखा, तो नहीं जानता कि रामानुजाचार्य कौन है। तो यहां पर कुरेश वो अपने गुरु महाराज के सन्यास ड्रेस को पहनकर और अपना व्हाइट ड्रेस अपने गुरु महाराज को देखकर वो जाते हैं कांचीपुरम, और वहां ये कोलातुंग से जब वाद विवाद शुरू होता है और उनके साथ महापूर्ण जो एक और उनके गुरु वर्ग के, तो वो भी जाते हैं क्योंकि बहुत वृद्ध होते हैं तो भाग नहीं पाते, तो कुरेश के साथ वो भी आते हैं। तो यहां पर कोलातुंग ये राजा कुरेश से पूछता है, उसको क्या लग रहा है ये रामानुजाचार्य, तो पूछता है कहो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अब कुरेश वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति करना, और ये कोलातुंग आग बबूला हो जाता है कि इसे तुम सिद्ध करो कि कैसे शिवजी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ये सिद्ध करो। तो उस जमाने में जब भी कोई व्यापारी कुछ चीज वजन करता था तो दो प्रकार के वजन हुआ करते थे, एक वजन को कहते थे द्रोण, एक वजन को कहते थे शिव। तो विनोद में कुरेश ने कोलातुंग को कह दिया कि अरे वजन में भी देखा जाए तो द्रोण शिव से भारी है। तो सोचिए, कोलातुंग जैसे राजा को जो पहले से इतना आग बबूला हुआ उसको ऐसे बोलना, तो जानबूझ के कुरेश ऐसे कर रहे थे ताकि ये कोलातुंग अपना पूरा क्रोध कुरेश के ऊपर उतार दें, जानबूझ के उकसा रहे थे कोलातुंग को, क्यों? ताकि उनके गुरु महाराज बच जाए। तो ये कोलातुंग इतना ज्यादा वो गुस्सा क्रोधित हुआ, उसने कहा कि रामानुजाचार्य मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता क्योंकि बचपन में मेरी बहन को बचाया था तुमने जब वो 8 साल की थी, भूत प्रेत का उसके ऊपर प्रकोप हुआ था और तुमने बचाया था, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लूंगा परंतु तुमने जो अपराध किया है तुम्हें दंडित में अवश्य करूंगा। और किस प्रकार का दंड? कोलातुंग ने दंड सुनाया कि ये महापूर्ण और ये रामानुजाचार्य मतलब कुरेश, चाकू से इनकी जो आंखें हैं वो नोच कर उखाड़ लो, प्लक आउट देयर आईज। तब जो एग्जीक्यूशनर्स जिनको ये आदेश दिया कोलातुंगों ने, वो कांपने लगे कि ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे साधु पुरुषों के साथ ऐसा इनको दंड, ऐसा व्यवहार, वो करने से कांप रहे थे, लेकिन क्योंकि आदेश दिया है सबके सामने इन्होंने कुरेश और महापूर्ण इनकी आंखें चाकू से उखाड़ ली और सब वहां से खून बहने लगा, सब जगह खून खून। और उस समय कुरेश वो मुस्कुराते हुए वो प्रार्थना करने लगे, भगवान को धन्यवाद देने लगे। वो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं रंगनाथ जी को कि हे रंगनाथ स्वामी, आज आपकी ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई है कि मुझे आप ऐसा अवसर दिए हैं कि अपने गुरु महाराज की मैं ऐसी सेवा कर पा रहा हूं। और ये जो एग्जीक्यूशनर्स, जब इन्होंने ये सुना कि ये धन्यवाद दे रहे हैं इनके भगवान को, तो इन्होंने कुरेश और महापूर्ण को अपने पॉकेट से पैसे दिए कि जाओ भाग जाओ आप यहां से, नहीं तो पता नहीं ये राक्षस कोलातुंगा क्या करेगा। तो यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं रोल वर्सेस गोल, तो गोल क्या था? रामानुजाचार्य इनको बचाना, और इस गोल को शुद्ध सिद्ध करने के लिए कुरेश किस हद तक गए। कई बार हम जो प्रचार कर रहे हैं अपने गुरु महाराज के आदेश पर, हमको लगता है कि हम कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि मैं कितना त्याग कर रहा हूं, यहां जा रहा हूं प्रचार करने के लिए, वहां जा रहा हूं प्रचार करने के लिए। लेकिन यहां पर एक गृहस्थ डिसाइपल रामानुजाचार्य के, उनका त्याग देखिए कि उन्होंने जीते जी अपनी आंखें, उनके आंखों का बलिदान कर दिया अपने गुरु महाराज की रक्षा करने के लिए। उन्होंने और उसके पहले अपने गुरु महाराज के वस्त्र पहन लिए, तो ये कहेंगे कि वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासियों में सबसे बड़े शिरोमणि बन गए। तो ऐसे उदाहरणों से हमको समझ में आ रहा है कि क्या मूड होना चाहिए एक प्रचारक का। जैसे चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने सन्यास लिया मायावाद संप्रदाय में, क्यों? उद्देश्य सिद्ध करने के लिए, क्योंकि उस समय उनका प्रचलन था। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मैं जब इस संप्रदाय में सन्यास लूंगा तब लोग मेरी वाणी सुनेंगे और फिर मैं उनको शुद्ध भक्ति दे सकता हूं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने सन्यास लिया तो उन्होंने देखा कि जब तक मैं सन्यास नहीं लूंगा तब तक मैं अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन पूर्ण रूपेण नहीं कर पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने तो ऐसा रोल अदा किया, एक बार वो सन्यास लेने के बाद प्रचार के लिए जब निकले तो उन्होंने देखा नवद्वीप के बाहर ही एक धोबी कपड़े धो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु गए और उनको हरिनाम लेने के लिए कहा, तो उसने कहा कि अरे ये भगवान का नाम लेता रहूंगा तो कपड़े कौन धोएगा। जैसे साधारणतः लोग कहते हैं कि काम कौन करेगा, ये नाम लेता रहूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि मैं तुम्हारे कपड़े धोता हूं, तुम भगवान का नाम लो। तो पहले तो उसको लगा कि ये सन्यासी मजाक कर रहा है, उसने कहा धो कपड़े धो। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वो ये धोबी के, और ये धोबी के भी कपड़े नहीं थे, पता नहीं किनके मैले कपड़े होंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कपड़े धोने लगे और धोबी को कहा कि भगवान का नाम लो। तो धोबी ने जब ये देखा कि ये व्यक्ति इतने निस्वार्थ भाव से मुझे केवल नाम लेने के लिए ये मेरा काम कर रहा है, तो उससे रहा नहीं गया, तो वो हरिनाम लेना शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। और जब और ऐसा नहीं कि कई बार हम भी किसी भक्त को बोलते हैं, मतलब मैं धोता हूं तुम्हारे कपड़े, फिर वो भक्त बोलता है नहीं 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 प्रभु जी, आप इतने नम्र बन रहे हैं, आप इतने बड़े भक्त हैं, आप मेरे कपड़े धोएंगे, तो हम सुपरफिशियली एक बार बोल देते हैं, फिर वो बोलता है कि आप नहीं नहीं आप कैसे, फिर हम छोड़ देते हैं, ठीक है आप धो लो फिर। बोलने के लिए बोल देते हैं मैं धोऊंगा आपके कपड़े, फिर बाद में जब वो थोड़ा बोलता है कि नहीं आप कैसे धोएंगे, और कई बार उल्टा होता है कि कोई हमारे कपड़े धोने आ रहा है, हम रोकते हैं, अरे प्रभु आप कैसे मेरे कपड़े, अरे प्रभु जी आप इतनी सेवा कर रहे हैं मौका तो दीजिए कपड़े धोने का, फिर हम आज ही धोना बाद में नहीं। ये हमारा हाल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक खाली औपचारिकता से उसको नहीं बोला कि मैं धोता हूं कपड़े, चैतन्य महाप्रभु दिन भर धो रहे थे, पूरे दिन भर, इतने सारे धोबी है कहां कहां से उसने सारे कपड़े लाए थे, तो दिन भर धो रहे थे और ये दिन भर चैंटिंग कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु कपड़े धो रहे हैं, ये अपना हृदय धो रहा है चैंटिंग के द्वारा, और इसकी पत्नी आ गई तो इसकी पत्नी देखती है कि ये मेरा पति क्या कर रहा है, अपना अपना काम धंधा छोड़ के ये क्या कर रहा है, तो उसकी पत्नी परेशान, और पत्नी आई और पत्नी ने देखा कि ये भाव विभोर अवस्था में धोबी चैंटिंग कर रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया हरि नाम, तो पत्नी ने इसको उसकी अवस्था से बाहर लाने के लिए उसको हिलाया, तो पत्नी ने उसको स्पर्श कर दिया, तो पत्नी के अंदर भी वो हरि नाम का संचार हो गया, तो पत्नी भी हरि नाम लेना शुरू की, और फिर उनके बच्चे आ गए, पूरा गांव आ गया, पूरा गांव आकर देख रहा है और सब एक दूसरे को टच करते, पूरा गांव वहां पर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, तो पूरा गांव वहां पर हरि नाम ले रहा है। तो फिर से हम पॉइंट पर कौन से आ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कौन सा रोल लिया, एक धोबी का रोल लिया हरिनाम का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए। प्रकाशानंद सरस्वती जो कि एक मायावादी सन्यासी वाराणसी के, और उनके 60,000 मायावादी शिष्य सन्यासी शिष्य, उनको परिवर्तित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जब उनसे मिलने गए तो जहां पर वो अपने पैर धोते थे चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे। क्यों? क्योंकि नम्रता वही उनका हृदय जीत सकती थी, कोई वाद विवाद नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता से उनका हृदय जीता। तो उद्देश्य क्या था? उनके हृदय को जीतना, और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा रोल अदा किया कि जाकर जहां पर वो चरण धोते थे अपने वहां जाके बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। अद्वैताचार्य, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को बहुत उनसे वरिष्ठ मानते और उनका सत्कार करते, अद्वैताचार्य को बिल्कुल पसंद नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु उनका सत्कार करे, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अद्वैताचार्य ने एक बार योग वशिष्ठ का प्रचार प्रारंभ कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु इतना क्रोधित हुए कि ये अद्वैताचार्य जिन्होंने मुझे बुलाया, मुझे अवतीर्ण करवाया अपने प्रार्थनाओं से, और ये मायावाद का प्रचार करें, तो चैतन्य महाप्रभु उनको मारने लगे, और तब अद्वैताचार्य ने कहा हाँ यही मुझे चाहिए था कि आप मेरे ऊपर शासन करें। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ गया कि इनका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, ऐसे ऐसे प्रचारक हुए हैं जो अपने इमेज की चिंता नहीं किए उद्देश्य सिद्ध करने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु से कहा, जॉर्ज हैरिसन से डोनेशन मांगो कृष्णा बुक पब्लिकेशन के लिए। तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि मैंने अपनी ऐसी इमेज बनाई है जॉर्ज हैरिसन के सामने कि वो मानता है कि मैं कभी डोनेशन नहीं मांगूंगा। तो प्रभुपाद ने कहा, क्या कहा श्याम सुंदर प्रभु से, यू मेक मी द बैड गाय। प्रभुपाद डिंट केयर अबाउट हिज इमेज इन फ्रंट ऑफ जॉर्ज हैरिसन, बट ही वॉज कंसर्न अबाउट द गोल ऑफ गिविंग कृष्णा बुक टू द वर्ल्ड। तो रोल वर्सेस गोल, इसके बाद प्रचारक के लिए जो नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, नॉट केयरिंग फॉर वन्स ओन इमेज। जैसे अद्वैताचार्य, श्रील प्रभुपाद, अम्बरीश प्रभु जो कि हेनरी फोर्ड के पोते, फोर्ड कंपनी के जो मालिक उनके पोते अल्फ्रेड फोर्ड, जो प्रभुपाद से दीक्षित हुए, तो वो बता रहे थे कि जब पहली बार अम्बरीश प्रभु, अब उस समय अल्फ्रेड फोर्ड, तो उनको प्रभुपाद के पास लेकर आए एक भक्त कि प्रभुपाद से मिलाएंगे, इतने बड़े फोर्ड कंपनी के ये मालिक हैं। तब सोचिए, फोर्ड कंपनी के मालिक मिलने आए हैं, तो प्रभुपाद फर्स्ट मीटिंग में जब इंट्रोड्यूस कराया गया कि प्रभुपाद ही इज अल्फ्रेड फोर्ड, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, तो प्रभुपाद कहते हैं, ओ आई नो, देयर वाज वन पर्सन इन कलकत्ता, ही हैड द एबिलिटी दैट ही कुड विदाउट सीइंग ही कुड डिटेक्ट विच व्हीकल इज पासिंग बाय, क्योंकि फोर्ड कंपनी कौन से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ये अल्फ्रेड फोर्ड को एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रॉपर फर्स्ट मीटिंग में। सो दिस मैन इन कलकत्ता, ही वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड देन ही वॉज आस्क्ड, सो टेल मी विच व्हीकल इज पासिंग बाय। सो ही सेड, दिस इज एम्बेसडर, द सेकेंड व्हीकल विच वन इज दैट, एंड ही सेड दिस इज मर्सिडीज। एंड देन आफ्टर अ व्हाइल देयर वॉज साउंड ऑफ वन व्हीकल एज इफ इट वॉज run down for 20 years with crackling sound of vessels on it, and then he was asked, so which vehicle is this passing by, and he said that is Ford. To ye joke, Ford gaadi ka jo joke hai, Alfred Ford ko suna rahe hai Prabhupada. मतलब ये कि फोर्ड गाड़ी की ऐसी ऐसी आवाज निकलती है जैसे कोई भंगार गाड़ी जा रही हो। तो ये जब सुना अल्फ्रेड फोर्ड ने, तो उन वो इतने इंप्रेस हो गए प्रभुपाद से। अभी अगर हम इमिटेट करने जाएं, मिस्टर टाटा अगर आए मिलने के लिए और हम बोले हैं ये सेम एग्जांपल यूज करेंगे एज इट इज प्रभुपाद ने यूज किया, वो काम नहीं करेगा, वो टाटा कर कर चला जाएगा। तो अम्बरीश प्रभु बता रहे थे कि क्या इतना इंप्रेसिव लगा उनको प्रभुपाद के अंदर, दैट दिस पर्सन ही इज नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट हिज इमेज। तो ये जो एक क्वालिटी है, जैसे वो फेमस स्टोरी है एम्स्टरडैम में जगन्नाथ इंस्टॉलेशन, पूरे टीवी कैमरास को बुलाया था प्रेसिडेंट ने कि इसको हम पूरे एम्स्टरडैम में दिखाएंगे कि एम्स्टरडैम में जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो सारे टीवी चैनल्स अपने अपने कैमरा लेकर आए थे इंस्टॉलेशन सेरेमनी, लेकिन वो इंस्टॉलेशन सेरेमनी में जो अरेंजमेंट्स इतने बेकार थे कि प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए, और प्रभुपाद को कोई परवाह नहीं कि पूरे कंट्री में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है प्रभुपाद सबके सामने चिल्ला रहे प्रेसिडेंट को, व्हाट नॉनसेंस ही, वो रैस्कल प्रेसिडेंट। बोले प्रभुपाद टीवी में सब आया, भाड़ में गया टीवी, यहाँ जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं हो रहा। सो प्रभुपाद डिंट केयर अबाउट हिज पर्सनल इमेज, ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट द गोल टू बी एस्टैब्लिश्ड। अब लास्ट पॉइंट एक प्रचारक के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। जैसे अक्सर जब हम प्रचार कार्य में लगते हैं, तो जब हमको पूछा जाता है डू यू लव प्रीचिंग, तो जो प्रचार कार्य में लगे हैं स्पॉन्टेनियस आंसर क्या होता है, डेफिनेटली आई लव प्रीचिंग। अब यहां पर दो प्रश्न हैं, वन इज डू आई लव प्रीचिंग और डू आई लव दोज हुम आई प्रीच। दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है कई बार। वन इज लविंग टू प्रीच एंड वन इज लविंग दोज हुम वी प्रीच। सो हु इज अ बेटर प्रीचर? अ बेटर प्रीचर और द बेस्ट प्रीचर इज दैट प्रीचर हु लव्स दोज पीपल हुम ही प्रीचेस, नॉट सिंपली लव्स टू प्रीच। अब जैसे इसमें उदाहरण है वासुदेव दत्त, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। अब इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने से ये वरदान मांगा कि जितने बद्ध जीव आपके धाम में जा सकें आप उनको ले जाइए और उनके जो पाप हैं उनके पाप के परिणाम मुझे दे दीजिए। तो सोचिए वासुदेव दत्त, जिन्होंने ऐसे ऐसे पापियों से वो मिले भी नहीं, उनके पाप कर्म अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो सोचिए कितना प्रेम उनसे वो कर रहे हैं। हाउ मच वासुदेव दत्त एज अ प्रीचर वॉज लविंग दो सिनर्स हुम ही डिडंट इवन मीट। जैसे कि आजकल के जो सेलिब्रिटीज होते हैं, अभी लोगों को कई बार ये लगता है कि अरे ये लोग कितना मेहनत कर कर हमारा मनोरंजन करते हैं। हा? कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत कर कर मनोरंजन करते हैं ये जो फिल्म स्टार्स वगैरह सिनेमा स्टार होते हैं, कितने साल साल भर शूटिंग करते हैं और वो भी रात रात भर शूटिंग करते हैं, किस लिए? हमारा मन बहलाने के लिए। तो कितने कंपैशनेट हैं लोग, ऐसे कई बार लोगों को। लेकिन ये हमारे मनोरंजन के लिए नहीं, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं सब करने के लिए। एक पत्नी अपने पति से कह रही थी देखो शाहरुख खान कितना प्यार कर रहा है, और एक तुम। तो उसने कहा उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं करने के लिए, तुम दो मैं भी करूंगा। और अगर 4 करोड़ उसको ज्यादा मिल गए तो वो हीरोइन चेंज हो जाती है। तो जैसे हमारे ब्रजबिहारी प्रभु बता रहे थे कि इस्कॉन में आने से पहले एक उनके बहुत फेवरेट क्रिकेट स्टार थे, उनको पूछते थे वो एक प्रकार से। तो एक बार हुआ क्या कि वो कॉलेज जा रहे थे और उन्होंने देखा कि बस स्टैंड पर इनका जो फेवरेट क्रिकेट स्टार बस स्टैंड पर खड़ा है। तो पहले तो इनको विश्वास नहीं हुआ कि ओरिजिनल है, फिर जाके ऑटोग्राफ लिया तो पूछा कि यहां पे बस स्टैंड पर कैसे, और बताया कि कैसे मैं आपको इतने सालों से पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे को टैक्सी नहीं मिल रही, तो बोले कि मैं लेके आता हूँ टैक्सी, मिनियल सर्विस, मैं लेके आता हूँ टैक्सी आपके। तो गए टैक्सी लेने के लिए, और जब तक ये टैक्सी लेकर आए, इन्होंने देखा कि वो दूसरे टैक्सी में बैठकर चला गया। तो इनका रियलाइजेशन ये था कि इस व्यक्ति को जो मैं इतना पूज रहा था, इसने मेरी परवाह तक नहीं की। तो वहां से इनका वैराग्य चालू हो गया, भड़ में गए सारे सेलिब्रिटी। तो देखिए यहां पर वासुदेव दत्त वो किनसे प्रेम कर रहे हैं, जिनको वो जानते तक नहीं, जो पापी हैं उनका पाप अपने ऊपर लेने के लिए वो राजी हैं। और इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त जैसे प्रचारक की ऐसी भावना देखी, दैट ही इज लविंग नॉट जस्ट दीज पीपल हुम ही वॉन्ट्स टू प्रीच, बट लविंग द सिनर्स हुम ही हैज नॉट प्रीच्ड येट। और वासुदेव दत्त गृहस्थ थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन को कहा कि ये वासुदेव दत्त अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर रहा है, ये दिन भर केवल दूसरों के हित के लिए सोचता रहता है। तो शिवानंद सेन को कहा, यू मैनेज हिज लाइफ बिकॉज ही इज सो मच एब्जॉर्ब्ड इन ट्राइंग टू बेनिफिट कंडीशन्ड सोल्स। तो ऐसा प्रचारक होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु इस हद तक जा रहे हैं कि शिवानंद सेन को अपॉइंट कर रहे हैं कि इसके पर्सनल लाइफ को तुम मैनेज करो, क्योंकि ये दिन भर लगा है बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। नारद मुनि का उदाहरण, नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को प्रचार किया, ब्रह्मचारी बना दिया हरियश्वस, और उसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने और 1,000 पुत्रों को पैदा किया और उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया नारद मुनि ने। तो नारद मुनि, अब देखिए नारद मुनि कोई रिजल्ट ओरिएंटेड प्रीचर नहीं थे कि मुझे कितना रिजल्ट मिल रहा है, कि मैं स्कोर्स कितना स्कोर मिल रहा है कि मैं जाके स्कोर अनाउंस करूं, किसको, नारायण को वैकुंठ में, कि 11,000 ब्रह्मचारी बना दिए, बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नारद मुनि इनको प्रचार करने के बाद वो जानते थे दक्ष प्रजापति जो इतने क्रोधित हुए होंगे, तो नारद मुनि का प्रेम देखो तो वो जाकर दक्ष प्रजापति को प्रचार करते हैं। अभी देखिए उनकी हिम्मत कि पिताजी को जाके प्रचार करने जाते हो। तो इससे ये समझ में आ रहा है, नारद मुनि वॉज नॉट केयरिंग अबाउट हिज ओन सेल्फ इन प्रीचिंग, ही वॉज केयरिंग अबाउट द पर्सन हुम ही इज प्रीचिंग। So he was actually loving those whom he preached. जैसे नलकुवर मणिग्रीव, उनको प्रेमवश उन्होंने वो श्राप दिया और आगे चलकर जो वरदान हुआ नलकुवर मणिग्रीव का, वैसे ही नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने जब जगाई मधाई को प्रचार किया तो उसमें मधाई ने जब नित्यानंद प्रभु के माथे पर मटका फेंक कर खून बहा दिया तो नित्यानंद प्रभु प्रेम कर रहे थे मधाई से और जगाई दोनों से। तो ये नित्यानंद प्रभु का एग्जाम्पल एज अ प्रीचर, दैट मोर देन लविंग टू प्रीच ही वॉज लविंग दोज हुम ही वॉज प्रीचिंग। और फिर श्रील प्रभुपाद का उदाहरण, श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या बता रही थी कि एक बार उन्होंने देखा, अब देखिए प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, अब देखिए जब कोई प्रचारक को कोई पोस्ट मिल जाता है तो वो हर समय क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरा प्रीचिंग भी उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। यहां पर प्रभुपाद के डिसाइपल ने देखा कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की, इतनी पुस्तकें लिखी, इतने शिष्य बनाए सन्यासी इत्यादि, प्रभुपाद कमरे में एक छोटे से कीड़े को प्रीचिंग कर रहे हैं, उसको हरे कृष्णा मंत्र सुना रहे हैं। स्लग, एक छोटा सा कीड़ा। तो ये माताजी बता रही थी कि प्रभुपाद वॉज अलोन, ही वॉज चैंटिंग हरे कृष्णा, पूरा झुका हुए थे प्रभुपाद, फ्लोर तक झुके हुए थे, और इस छोटे से कीड़े को हरे कृष्णा बोल रहे। फाउंडर आचार्य ऑफिस कौन? तो यहां पर भी क्या समझ में आ रहा है, प्रभुपाद वॉज लविंग टू हुम ही वॉज प्रीचिंग, ही वॉज लविंग इवन अ इंसेक्ट लाइक स्लग। और ये कैसे हम समझें कि प्रभुपाद प्रीच्ड इन अ वे दैट ही लव्ड दोज हुम ही प्रीच्ड, कि प्रभुपाद के जाने के पश्चात प्रभुपाद के एक शिष्य सुदामा विप्र महाराज, जो कि कुछ कारणवश वो इस्कॉन छोड़ दिए और बहुत वर्ष तक वो इस्कॉन के संपर्क में नहीं थे, तो उनकी जो मदर, उन्होंने जहां पर वो रह रहे थे वहां के लोकल इस्कॉन में फोन कर बुलाया भक्तों को। और जब वो भक्तों ने देखा कि अरे ये तो सुदामा विप्र महाराज की मदर, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा ये बहुत साल तक इस्कॉन में था, फिर इस्कॉन में नहीं था, और ये जब अपने मृत शैया पर था कुछ दिन पहले, when he was leaving his body, तो जस्ट अपने शरीर छोड़ने के कुछ क्षण पहले ये अपने दोनों हाथ ऐसे कर I never expected Srila Prabhupada that you would come to take me back home back to Godhead. और इनकी माता ने ये रिपोर्ट किया दैट एक्चुअली ही सॉ प्रभुपाद वॉकिंग इनटू हिज रूम एंड टेकिंग हिम अलोंग विथ हिम। दिस इज हाउ अ प्रीचर शुड बी, कि प्रभुपाद इस्कॉन स्थापित करने के बाद पता नहीं अब कहां पर और प्रभुपाद प्रचार कार्य में लगे हुए होंगे, लेकिन प्रभुपाद अपने इस शिष्य को भूले नहीं जिन्होंने उनसे दीक्षा ली थी, जिन्होंने उनकी सेवा की थी। एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स, इन स्पाइट ऑफ लीविंग इस्कॉन एंड लीविंग प्रभुपाद, प्रभुपाद डिडंट लीव, एंड दिस शोज दैट प्रभुपाद वॉज दैट क्वालिटी प्रीचर, दैट ही डिडंट जस्ट लव प्रीचिंग, ही एक्चुअली लव्ड दोज हुम ही प्रीच्ड। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। किसी का कोई प्रश्न? तो हमारा फाइनली फोर्थ लेसन पूरा हुआ आज।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे आपने बताया राधा रानी का जो स्वरूप था सच्चिदानंद स्वरूप था, सो जस्ट वांटेड टू नो लाइक कृष्णा वाज फर्स्ट इनकार्नेशन वाज संकृष्ण देन प्रद्युम्न अनिरुद्ध, व्हाट लाइन श्रीमती राधा रानी इज देयर एनी डिस्क्रिप्शन आईडिया?
राधा रानी इज नॉट एन इनकार्नेशन, शी इज द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा। She is no expansion. She is Krishna in female form. Like that. She directly just manifested from the heart of Krishna. Aur koi prashna?
कृष्ण प्रभु, जो दुखी का उदाहरण दिया आपने चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तो दुखी केवल अपना रोल प्ले कर रही थी कि ताकि उनका गोल फुलफिल हो सके। और कई बार कई भक्तों को ऐसी सेवा मिलती है कि वो जैसे दुखी का उदाहरण लेते, महाप्रकाश लीला एक हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा था, तो शी वॉज मिसिंग दैट, मतलब वो सेवा कर रही थी लेकिन उसे देखने को नहीं मिल रहा था कि क्या चल रहा है, या सेवा करने को नहीं मिल रहा था. तो कई भक्त होते हैं कि उनको ऐसी सेवा ऐसे महोत्सव में मिलती है तो वो चेतना कभी आती है कि आई एम मिसिंग आउट समथिंग. तो क्या ऐसे ही है या गलत है?
ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन लें कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु से एक क्वेश्चन पूछते कि वॉज दुखी मिसिंग आउट? नहीं, बिकॉज दुखी वॉज एक्चुअली डूइंग समथिंग विच नोबडी एल्स वॉज डूइंग. सो इन वन सेंस वी कैन से दैट अदर्स वर मिसिंग आउट वॉट दुखी वॉज डूइंग. तो यदि कोई हिस्टोरिकल इवेंट चल रहा है और मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई डे है, जैसे कोई इंस्टॉलेशन का इवेंट चल रहा है और सब यहां पर ऑल्टर पर सब सेवाएं चल रही हैं, जो प्रोमिनेंट सेवा चल रही है, और कोई एक भक्त कहीं शू स्टैंड पर या कहीं पीछे बर्तन मांज रहे हैं, तो हां वो भक्त यहां पर भाग नहीं ले रहे होंगे. मिसिंग आउट कब बोल सकते हैं? कि यदि वो उस सेवा में कनेक्टेड नहीं है किसी तरीके से. यहां पर इंस्टॉलेशन चल रहा है, यहां पर इतने सब चल रहा है और कोई सो रहा है. Then yes, you can say he is really missing out. तो हमारा सिद्धांत क्या है? फले न परिचयित. जो भी चीज है हम उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं शास्त्र के अनुसार? उसके रिजल्ट से. तो अगर हम दुखी इनका एग्जाम्पल लें तो रिजल्ट क्या हुआ? शी डायरेक्टली गॉट द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, बिकेम सुखी. तो फिर ये सारे जो क्वेश्चन है, वेदर शी वॉज मिसिंग आउट वेदर नॉट, तो वैसे ही चाहे कोई भक्त कैसी भी सेवा कर रहा हो, अगर एट द एंड वो उस सेवा के उद्देश्य को स्थापित कर रहा है, सो ही डिडंट मिस एनीथिंग. और अगर कोई ऑल्टर में भी खड़ा है लेकिन उद्देश्य को सिद्ध नहीं कर रहा है, सो ही मिस्ड आउट एवरीथिंग ऑल दो बीइंग ऑन द ऑल्टर. ये फ्लिप साइड है उसका. तो इसलिए भक्ति जो है वो बहुत रेवोल्यूशनरी है, बहुत सब्जेक्टिव है और अनप्रेडिक्टेबल है. द मर्सी ऑफ कृष्ण. इसलिए होता क्या है कि जब हम केवल बाहरी रूप से फोकस करते हैं, जो हमने ये पॉइंट लिया रोल वर्सेस गोल का, हम बाहरी रूप से फोकस करते हैं तो हर समय हम जो उस सेवा की पॉपुलैरिटी है उसमें फंस जाते हैं, और उसका जो उस सेवा का जो प्राण है, जो एसेंस है, जो लाइफ है, वो हमसे छूट जाता है. जैसे प्रभुपाद, मैं बताना भूल गया, प्रभुपाद ने क्या क्या रोल अदा किए. एक तो उन्होंने सन्यास लिया इसीलिए ताकि वो प्रीचिंग कर सके वर्ल्ड वाइड, और कोई उद्देश्य नहीं था उनका. और फिर वहां जाकर वेस्ट में प्रभुपाद शादियां करवा रहे हैं अपने शिष्यों की. एक सन्यासी, प्रभुपाद के ऊपर बहुत लोग आलोचना करने लगे, उनके गुरु बंधु, ये क्या है, ये कौन सा सन्यासी है? प्रभुपाद वॉज कंडक्टिंग मैरिजेस, क्योंकि प्रभुपाद उद्देश्य सिद्ध करना चाहते थे, न केवल अपने रोल के ऊपर उसमें अटकना चाहते थे. तो ये मैं इंसिडेंट बताऊंगा कि जब ऐसी आलोचना प्रभुपाद की होने लगी तो मायापुर में प्रभुपाद ने एक बार अपने सन्यासी गॉड ब्रदर्स को प्रसाद के लिए बुलाया और मालती माता जी को बोला सर्विंग करो। तो एक तो माता जी और वो भी फॉरेनर जिनको प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा दी, तो ये ट्रिपल शॉकिंग चीजें। और वो इन प्रभुपाद के सन्यासी गॉड ब्रदर्स को सर्विंग कर रही। अब इतना ही नहीं, जब वो सर्विंग कर रही थी प्रभुपाद ने एक ऐसा स्टेटमेंट कहा इनको। प्रभुपाद ने कहा सो शी इज मालती, शी इज माय ब्राह्मण इनिशिएटेड डिसाइपल एंड इफ आई टेल हर शी कैन स्लिट हर थ्रोट फॉर मी एंड आई कैन डू द सेम फॉर हर। ये जो खा रहे थे सन्यासी, वो निवाला उधर ही अटक गया उनका। तो यहां पर प्रभुपाद ये बताना चाहते थे कि डोंट जस्ट गेट कॉट अप इन आई एम अ ब्रह्मचारी, आई एम अ गृहस्थ, आई एम अ सन्यासी। अंडरस्टैंड द गोल फर्स्ट। और गोल क्या है? गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। तो रोल जरूरी है, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ गोल। दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद, दैट व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड। कुरेश वॉज रेडी टू टेक ऑन सन्यास ड्रेस एंड ही फोर्स्ड हिज स्पिरिचुअल मास्टर टू पुट ऑन वाइट टू प्रोटेक्ट। मतलब इससे ज्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल मेरे को नहीं सूझा कि रोल और गोल के अंदर, कि एक गृहस्थ डिसाइपल अपने सन्यासी गुरु को इस हद तक फोर्स कर सकता है। सो इट वॉज अटर ह्यूमिलिटी ऑफ कुरेश टू फोर्स हिज स्पिरिचुअल मास्टर टू वेयर व्हाइट एंड रन अवे टू प्रोटेक्ट हिम। और वो कैसे समझ में आया? व्हेन ही वॉज रेडी that his eyes to be plugged out. So that is the standards which these great souls have set. हम किसी का imitate नहीं कर सकते, but कम से कम उनके आदर्श को अपने जीवन में उतार कर थोड़ा बहुत इन गुणों को अपने जीवन में उतार सकते।
My question is regarding the touching example you gave regarding Jananivas Prabhuji. Why do such things happen even in a place like a temple? Why human
Which
beings
things? For,
like how he was ill-treated, Jananivas Prabhu, though
he was not ill-treated.
Not in that sense, but people clamor around for something else. Even in a religious place, why? What do they look for? What do they look for? Why do they look for such prestige or position, or whether I do the abhishek or he does abhishek? Why such things happen? Because people have left everything and come here to please Lord, and still they clamor. Why such things happen? Why this attitude is there? It still remains in a human being.
See, we all have come to Krishna consciousness as patients. Okay, so this example we have given before also, that we are like patients, ISKCON is like a hospital. So if I ask this question going to a hospital, that why this patient is coughing, why this patient is vomiting, why this patient is having diarrhea, this hospital is, you know, you are bound to see patients with those symptoms. In a hospital, you won't find patients, you know, in pink of their health, roaming around, you know, with smiling faces. You will find, you know, someone on a stretcher and the leg is tied up, you know, hands and saline and all that stuff. That's what you'll find in a hospital. So, now, to see that patients with their symptoms in a hospital is a common sight. But what is giving solace to a person, outsider, that he has all the symptoms of that disease, but the solace is that he is in the hospital. He is in the right hospital and the treatment is going on. And it's just a matter of time that he will also walk out as healthy as anyone else. So that's how we should see that yes, ISKCON is a religious organization, and over here, and it's an organization which Prabhupada started for patients of this entire world to come and get treated. So you will find that some people, they are just on the verge of getting discharged from the hospital. Already they are, you know, out of that hospital dress. Some who have just entered with broken legs and broken limbs. अभी अभी entry किया है. कोई 6 महीने से bed पे ही है. कोई 10 साल से है. क्योंकि disease इतना गहरा है कि वो 10 साल से वहाँ पर है. कोई ICU में है, कोई general ward में है, कोई special ward में है. So what should be our outlook? Whether one is in ICU, whether one is in general ward, whether one is in special ward, they are all in hospital. Maharaj ne ek lecture mein bola that a person is dirty. It's a saying actually. That don't criticize a dirty man when he's already in shower. If he's already in shower, it's just a matter of time that he'll come out clean. Right now, yes, you'll see all the dirt coming out. But just wait. So yeah, these anarthas are there. We want name, fame, recognition. Anarthas are there. But at least we are at the right place to get treated. So that is how we should see. और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण जी, आपने जो अभी स्टैंडर्ड बताया प्रचारक का, तो ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है समझो. लेकिन कोई भक्त है, लेकिन ये लेके ने प्रकारे बोलो इमेज के लिए, बोलो मान सम्मान के लिए, और लेकिन भगवान का प्रचार तो कर रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि उसको स्टैंडर्ड पता भी है हमें ये स्टैंडर्ड तक जाना है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता. हो सकता है उसकी कंडीशन है या कुछ भी हो, लेकिन भगवान का प्रचार कर रहा है, लेकिन ऐसे प्रचारक की क्या स्थिति हो सकती है?
मतलब जाना नहीं चाहता या जान नहीं पा रहा, दो चीजें हैं.
जाना नहीं चाहता यानी उसकी कंडीशन है, उसको पता है स्टैंडर्ड ये है, लेकिन
हाँ. तो जैसे अभी मैंने हॉस्पिटल का उदाहरण दिया, तो अगर हॉस्पिटल का उदाहरण हम फिर से लें कि ठीक है, कोई नेम फेम रिकग्निशन के लिए प्रचार कर रहा है, तो एक उसका अनर्थ होगा कि उसको वो चाहिए, और वो प्रयास कर रहा है कि उससे बाहर निकलने का, और एक है वो प्रयास ही नहीं कर रहा है उसे बाहर निकलने का और उल्टा कर रहा है. तो ये दोनों में अंतर क्या है कि एक पेशेंट गया है अपनी बीमारी लेके, और वो उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं बीमारी के, लेकिन वो ट्रीटमेंट में लगा हुआ है, और दूसरा है बीमार अवस्था में हॉस्पिटल में गया है लेकिन नाटक कर रहा है ट्रीटमेंट लेने का. वो लेना ही नहीं चाहता ट्रीटमेंट, तो उसके सिम्टम्स कभी जाएंगे नहीं. जैसे कि मैं एक बार अपने भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में था कुछ समय के लिए, तो मैंने एक भक्त को कहा नारियल पानी लाने के लिए, तो भक्त ने कहा कि वो हाल ही में वहां पर रूल निकाला है कि बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा पेशेंट्स को. तो मैंने कहा नारियल पानी में क्या है प्रॉब्लम? तो फिर उन्होंने रिपोर्ट किया कि मेरे सामने वाले वार्ड में एक पेशेंट ने नारियल पानी में दारू भरकर मंगवाया. तो देखिए कलयुग में किस हद तक कि उसने जो भी उसके रिश्तेदार को कहा कि नारियल पानी खरीदो, पूरा पानी फेंको उसमें दारू डाल के स्ट्रॉ डाल के लेके आओ। तो ऐसे भी हो सकता है कोई हॉस्पिटल के अंदर है दारू पी रहा है और वो भी बाहर से नारियल पानी दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है कि नारियल पानी है अंदर दारू है। तो अगर कोई जानबूझ के फॉलो नहीं करना चाहता तो उसके सिम्टम्स तो बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, उसके बीमारी के सिम्टम्स कम होना तो दूर है। हाँ, अगर ठीक है हमारे अंदर अनर्थ हैं और हम नम्रता पूर्वक अनर्थों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर भगवान वो देख रहे हैं और वो भगवान दूर कर देंगे। लेकिन अगर कोई जानबूझ के इन अनर्थों को कल्टीवेट कर दूर नहीं करना चाहता तब फिर उसकी स्थिति और बदतर से बदतर होगी, बद से बदतर बोलते हैं जिसको। तो खाली प्रश्न ये है कि वो सही रूप में प्रचार करना चाहता है या वो जो नेम फेम रिकग्निशन उसको ही पाना चाहता है। तो भगवान वो दे देंगे उसको, लेकिन उसको कृपा नहीं मिलेगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में कुछ ऐसे व्यक्ति आए जो अपना पांडित्य चैतन्य महाप्रभु के सामने दिखाना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल अपनी कृपा नहीं दी उनको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया कि अपना पांडित्य दिखाना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुन लिया, सुना अपना जो भी सुनाना चाहते, लेकिन उनको शुद्ध प्रेम नहीं मिला। तो अगर कोई प्रचार में केवल अपना पांडित्य दिखाना चाहता है, केवल अपना झंडा ऊपर करना चाहता है तो भगवान वो करा देंगे, लेकिन फिर उसको शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं होगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की
जय। शिक्षा अष्टकम प्रभु की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।